हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 17। यस्त्वात्मरतिरेवस्यान् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं होता। यज्ञ की प्रक्रिया बद्धात्माओं की शुद्धिकरण के लिए होती है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो जीवात्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, अपने आप को अपने स्वरूप को समझती है, उसके लिए यज्ञ की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से संतुष्ट रहने का अर्थ है कि भक्ति की क्रियाओं से ही वो पूरी तरह संतुष्ट रहता है। जो कर्तव्य उसे भगवान के प्रति करने हैं, उनको करने में ही वो संतुष्टि का अनुभव करता है, अभाव का अनुभव नहीं करता। ऐसा नहीं लगता उसको कि उसे कुछ और करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को और कुछ नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे नियत कर्मों को करने का फल है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस बात की चर्चा तो भागवतम में पहले भी हमने करी है कि किस प्रकार से भगवान का नाम जब अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो कोटि कोटि यज्ञ करने का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसको अलग से कुछ और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। बहुत सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है तो स्वतः उसे भगवान से अपने संबंध के प्रति विश्वास जागृत हो जाता है। एक सन्यासी इस संबंध में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं सोचता था कि जब मुझे 16 माला का जप करना ही है तो क्यों ना मैं अच्छे से करूँ, ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करूँ। और ऐसा करते करते 30-40 सालों से वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझको ये एक संबंध का अनुभव भगवान कृष्ण से होने लगा है कि मैं कृष्ण का हूँ, और अगर ये भावना मेरे हृदय में जागृत हो जाती है तो नेचुरल सी बात है हम बहुत निडर हो जाएंगे, हम आश्वस्त हो जाएंगे कि मैं अगर कृष्ण का हूँ तो कृष्ण मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। जैसे हम अपने पिता के प्रति सोचते हैं क्योंकि हम उनके लड़के हैं, तो स्वभावतः प्राकृतिक रूप से वो मेरी रक्षा करेंगे, साथ साथ कृष्ण रक्षा करने में समर्थ भी हैं। तो हमारे हृदय में जो डर है वो इसी वजह से है क्योंकि ये भावना अभी सुदृढ़ नहीं है, बुरी चेतना या कलुषित चेतना के कारण कि हम कृष्ण के हैं। वास्तविकता तो है लेकिन हम ऐसा अनुभव नहीं करते हैं। तो दूसरा बात यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, यानी कि भगवान उसके कौन से कार्य से प्रसन्न होते हैं ये उसको हृदय में भगवान स्वयं ही चेता देते हैं, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध होती है। इसलिए उसको वैदिक आदेशों के अनुसार एग्जैक्टली क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वैदिक आदेशों का पालन करने का वो है चेतना की शुद्धि। तो वो कृष्ण भावनामृत के कार्यों के द्वारा स्वयं हो जाती है, इसलिए उसे सब कार्य करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति इस चेतना से ऊपर उठ गया है कि वो शरीर नहीं है, उसका प्रमाण ये है कि उसको सुंदर या स्त्री और शराब और अन्य भौतिक प्रलोभन में कोई आकर्षण नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हृदय में हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें स्त्री के प्रति आकर्षण है, शराब के प्रति तो चलिए भक्तों को नहीं होता, लेकिन स्त्री के प्रति या पैसे के प्रति या और किसी भौतिक आकर्षण से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि इस समय अभी हम पूरी तरह से वैदिक आदेशों को के ऊपर उठे नहीं हैं। तो इसलिए हमको वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ उस भक्त के बारे में बता रहे हैं जिस हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से वो ऊपर उठ चुके हैं। टेक्स्ट नंबर 18, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। आमी कृष्ण दास कर ले ये विश्वास तो और कोई दुख नहीं। अगर जीव ये विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ तो उसके जीवन में और कोई दुख नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे बात तो बहुत साधारण सी लग रही है, तो सब लोग करते क्यों नहीं हैं? तो उसका उत्तर बहुत सीधा है, चेतना की अशुद्धि। चेतना जब बहुत शुद्ध होती है, पूरी तरह से शुद्ध होती है, तब व्यक्ति अनुभव कर पाता है, समझ पाता है कि वो कृष्ण का अंश है और कृष्ण का सेवक है। अन्यथा इस बात को समझना, केवल सिद्धांतिक रूप से समझ लेना अच्छा है, लेकिन फिर भी ये ज्ञान हृदय में स्फुरित होना चाहिए। अगर हम कृष्ण की शरण में हैं, या कह सकते हैं दूसरी तरह से समझिए कि अगर हम समझ रहे हैं कि कृष्ण हमारा रक्षा कर सकते हैं, तो फिर और किसी देवता या मनुष्य की शरण में व्यक्ति क्यों जाएगा? तो यदि जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी कृष्ण की शरणागति को हमने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। कितना भी हम बचने का प्रयास करें, लेकिन वास्तविकता तो यही है। और ये कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति का ये नहीं है कि कृष्ण भावनामृत का प्राप्ति हो गई तो व्यक्ति और कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की भक्ति के लिए होते हैं, और कोई सामाजिक दायित्व के प्रति उसका कह सकते निष्क्रियता हो जाती है, कहना चाहिए इनडिफरेंट हो जाता है। मतलब उसको ध्यान उसको इतना आवश्यक नहीं है सारे सामाजिक कार्यों को करना। क्यों? क्योंकि भगवान को संतुष्ट करता है अपनी भक्ति की क्रियाओं के द्वारा, जो कि सारे वर्णाश्रम का उद्देश्य है। तस्माद, नेक्स्ट श्लोक को देखिएगा, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष परमाप्नोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इस प्रकार की पद्धति को दोनों ही प्रकार के लोग आचरण कर सकते हैं। जो लोग निर्विशेषवादी हों, चाहे वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हों, दोनों ही प्रकार के लोग, सभी के लिए परम की जो परिभाषा है वो अलग अलग होगी। तो निष्काम भावना से कर्मयोग करते हुए, निष्काम कर्मयोग करते हुए व्यक्ति के हृदय में ज्ञान उदित होता है। ये साक्षात्कार होने लगता है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, और आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होता है। और उसका उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार उसका साक्षात्कार होगा। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन प्राप्त पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य को भक्तों के लिए लिख रहे हैं, निर्विशेषवादियों के लिए नहीं लिख रहे हैं, कि भक्तों को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए तो वो भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। तो फिर ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन युद्ध करने के लिए नहीं युद्ध कर रहे थे, बल्कि कृष्ण जो चाहते हैं वो ये कार्य कर रहे थे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना, यानी कि व्यक्ति अहिंसक होगा तो सोचेगा अरे लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं कितना अहिंसा को पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन केवल इससे लोगों की प्रशंसा प्राप्त होगी। भगवान की संतुष्टि होगी या नहीं होगी ये इस पर प्रश्न उठाया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार की आसक्ति, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश के बारे में सोचने के बजाय ये सोचे कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म क्यों है? क्योंकि पूर्ण यानी भगवान कृष्ण इस कर्म से प्रसन्न होते हैं। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वे अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कुछ कार्य करना चाहता है तो वेद में बताते हैं कि आप यज्ञ करो ताकि उसका जो पाप फल है वो निरस्त हो जाए, लेकिन कृष्ण भावना में पाप और पुण्य का मतलब ही नहीं रह जाता क्योंकि कृष्ण कर्म करते हैं जिसके द्वारा पाप और पुण्य दोनों का ही निरस्तीकरण हो जाता है और व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता है। इस बात को भगवान गीता में भी बताएंगे 9वें अध्याय में, शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपेशसी। अगर अपने हर कर्म को भगवान कृष्ण को व्यक्ति समर्पित करता है तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होकर वो भगवान के पास निश्चित रूप से पहुंच जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। इंटरेस्टिंग है, जैसे चले प्रभुपाद जी के संग देखिए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतना प्रचार किया, फार्म कम्युनिटीज की स्थापना करी, लेकिन सारा उद्देश्य यही था कि कृष्ण प्रसन्न हो, उनके गुरु महाराज प्रसन्न हो। इसी प्रकार से भक्त इस जगत में बहुत बड़े बड़े कार्य भी कर सकते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं उनको भूलना चाहिए, और उद्देश्य ना भूलें इसके लिए आवश्यक है कि हम श्रवण कीर्तन को बहुत स्ट्रांगली लें। जितना हम भगवान का श्रवण कीर्तन दृढ़ता से करेंगे उतनी ही मात्रा में हम इस चेतना में से युक्त रहेंगे कि मुझे कार्य केवल फलों के लिए नहीं करना है बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। और इस चीज़ को करने से हम इस यज्ञ की जो धीरे धीरे शुद्धिकरण के तरीका है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि देखिए, इसके पहले भी उदाहरण हैं जो कुछ लोगों ने कर्मयोग करके सिद्धि को प्राप्त की है, इसके बारे में भगवान उदाहरण दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 20, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यानी कि भले ही अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हैं, भावना भावित हैं, अपने संबंध को तो निश्चित रूप से भगवान से अनुभव कर रहे हैं, फिर भी सामान्य लोगों को ये शिक्षा देने के लिए, क्योंकि वो एक क्षत्रिय की पोजीशन पे थे, एक लीडर की पोजीशन पे थे, किस प्रकार से यज्ञमय जीवन जीना चाहिए, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आपको अपना क्षत्रिय का धर्म कर्तव्य करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। जनक जो थे ये माता सीता के पिताजी थे, तो भी वे लोग समान जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारा नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत की एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए कि युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति भले ही खुद उस शिक्षा को या उस आचरण को पालन करने के लिए बाध्य ना हो, अपने शुद्धिकरण के लिए उसको वो कृत्य करने की आवश्यकता ना हो, लेकिन समान जनता उस कृत्य को करके या उस नियम का पालन करके शुद्ध होगी। इस कारण से एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। जैसे बताया जाता है कि जो नियोफाइट भक्त हैं, नौसिखिय भक्त हैं, उनको भक्ति के नियमों को पालन करना आवश्यक है ताकि भक्ति में प्रगति कर सके। ऐसे ही मध्यम अधिकारी, लेकिन जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है भक्ति के नियमों का पालन करना, सारे नियमों का, लेकिन नौसिखिय भक्तों को सिखाने के लिए उस प्रकार से आचरण करते हैं ताकि नए जो भक्त हैं वो कहें, अरे देखो इतना सीनियर भक्त हैं, वो इस प्रकार से मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी आवश्यक है करना। ये हमारे संग स्वभाव ही है कि जो आसपास के लोग कर रहे होते हैं उसका अनुकरण हम लोग करने लगते हैं। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अपने आचरण और अपनी शिक्षा के द्वारा हमें सिखाते हैं कैसे हमें कार्य करना चाहिए। टेक्स्ट नंबर 21 को देखेंगे। यदि यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को शिक्षा देना चाहता है तो शिक्षा के साथ साथ उसको अपना आचरण भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जब हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो मन में सोचना चाहिए कि क्या मैं इस शिक्षा का पालन कर रहा हूँ। और हम देखेंगे कि बहुत बार हम लोग शिक्षा देने में तो बहुत आगे होते हैं लेकिन उसका पालन करने में बहुत पीछे हो जाते हैं। इसीलिए समाज में अधर्म का प्रचार हो रहा है, क्योंकि जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो स्वयं धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसका ही अनुसरण सामान्य लोग करते हैं। हर व्यक्ति ये नहीं पूछने वाला कि शास्त्र में क्या लिखा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो उनके जो जिनको वो श्रेष्ठ मानता है उनके उनका वो अनुगमन करता है, उनका अनुसरण करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रेष्ठ पद पे हैं उनका और अधिक कर्तव्य है कि कृष्ण भावना के जो नियम हैं उनका दृढ़ता से पालन करें ताकि जो उनके अंतर्गत जो लोग हैं वो भी भक्ति ठीक से करें सब अपने आप। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। यानी कि आचार्य कोई टाइटल नहीं है, आचार्य की योग्यता है। आचार्य का मतलब व्यक्ति शिक्षा दे लेकिन शिक्षा का पालन भी अपने जीवन में करे, तब वो व्यक्ति आचार्य कहला सकता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। बहुत सुंदर लाइन है, धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम् महाजनो ये न कथा सपन था। भागवत धर्म, यह धर्म बहुत मुश्किल है समझना, इसलिए जिस प्रकार से पूर्ववर्ती महान भक्तों ने प्रहलाद महाराज, बलि महाराज और भी जितने भक्त हुए हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, जिस प्रकार से नारद मुनि, जिस प्रकार से इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी है उसी प्रकार से उसी पाद का अनुगमन करते हुए हमको भी भक्ति करनी चाहिए और तब हम सिद्धि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे भक्ति की है और करने का तरीका बताया है वैसे ही हमें करना चाहिए। अपने मन से हम जोड़ेंगे कुछ या कम करेंगे तो प्रभाव अलग हो जाएगा। जैसे कोई हम दवा खा रहे हैं और दवा में कुछ और अपने मन से जोड़ दिया, मिला दिया, नमक, पानी, मिर्चा, मसाला कुछ मिला दिया, तो दवा का प्रभाव परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण से देखिए, जब लोग भक्तों का संग नहीं करते हैं तो वो भक्ति में इतनी प्रगति नहीं करते हैं। कुछ कुछ अपने मन से भक्ति कर लेने से व्यक्ति पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है, लेकिन भक्तों के संग में आता है और प्रमाणिक रूप से भक्ति करता है तो अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं देखता है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन रहा है या मिनिस्टर बन रहा है तो उसे भगवद्गीता, कम से कम भगवद्गीता का तो अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और हो सके तो मनु संहिता और बाकी शास्त्रों का भी, ताकि वह लोगों को सिखा सके कि किस प्रकार से एक आदर्श जीवन जीना चाहिए और वो खुद भी आदर्श जीवन जिए। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति बच्चे पैदा करना चाहता है, पिता बनना चाहता है, माता बनना चाहता है, तो उसे भी कम से कम भगवद्गीता का तो ज्ञान होना ही चाहिए, ताकि उस प्रकार से वह जीवन जिए और अपने बच्चों को भी इस प्रकार से ज्ञान दे सके, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। तो हम सभी का कर्तव्य है किसी न किसी रूप में हम एक लीडरशिप की पोजिशन पर, नेता के पोजिशन पर हम रहते हैं, किसी कोई ना कोई हमें ज़रूर उदाहरण के रूप में देखता है। तो हमारा कर्तव्य है इस प्रकार से हमें अपना आचरण रखें, ताकि जो हमारे जो लोग हमें सम्मान देते हैं या हमें नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, उनका भी कल्याण हो और हमारा खुद का भी कल्याण हो। और अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि भगवान क्यों जब इस जगत में आते हैं तो इन नियमों का पालन करते हैं। क्या उनको नियम पालन करने की आवश्यकता है? क्या उनको शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।